علم و عمل کا کارواں آئی ایس او ہے پاک وطن کے پاس بائی ایس او
میں بھی بہت مشکل سے ایسی صفوں میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے, لیکن یہ صرف دوسری صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر اخلاص موجود ہو اور آپ کی تربیت ایک بہترین خطوط کے اوپر استعمال کی جائے. لیکن اگر یہی تربیت انسان کو جبری اور مشکلانہ طریقے سے دی جائے تو ڈیفینیٹلی انسان جب اس دائرے سے نکلتا ہے تو واپس کبھی نہیں لوٹتا. یہ درس کربلا کا ہے کہ اس میں آنے والا کبھی نکلتا نہیں. اس دائرے کے اندر جو اس حدود کے اندر جو آ کے اپنی فکر کو استعمال کرتا ہے اس کی فکر پھر کبھی بڑھتی نہیں ہے. مجھے صرف 3 دن پہلے بتایا گیا کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور آپ لوگوں کو خطاب کرنا ہے. جسٹ اباؤٹ دا جی آئی اینڈ گیٹس کے حوالے سے تو میرے لیے کافی جاننے کے لیے اس وقت آئی واز جسٹ سیک کہ ہاؤ آئی ول فیس آل آف یو, بیکاز بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایک قرض ہوتا ہے ان دوستوں کے اوپر جو آپ کی صفوں سے نکل کے پریکٹیکل لائف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور وہ قرض ہمیں اچھے طریقے سے لوٹانا ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس طریقے سے آپ کو واپس لوٹائیں کہ آپ پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں. نہیں, آپ کو بڑھتے نہیں دینا. ہم نے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اور بھی زیادہ کمپوز کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اور بھی زیادہ کربلا کے پاس لے چلیں. بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس بہترین امور کے لیے اپنے آپ کو جد و جہد میں مصروف کیا, اور جب پریکٹیکل لائف کے اندر گئے تو ان میں سے کافی دوست ہمارے ہم سے جدا ہو گئے. بہت ساری ایسی وجوہات, بہت سارے ایسے نہ چاہتے ہوئے ایسے اقدام انسان کے راستے کی زنجیر بن جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو اس الہی فریضے کے لیے تیار نہیں کر پاتے. تو بغیر کسی بات کے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں جو کہ جس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں, تاکہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر وقت اللہ نے دیا تو کچھ اور ڈسکشن بھی کریں گے. The topic of discussion here that I was prepared for you, جو آپ کے لیے میں نے تیار کیا, میں نے ایک دن ایک اخبار پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بہت ہی اہم آزادیاں لکھا ہوا تھا جس میں ایک ایسا انسان جس نے پوری زندگی اپنی بہترین جد و جہد میں گزاری اور خاص متعدد بیماری میں مبتلا ہو گیا, کسی نے پوچھا کہ تم بہت ہی متعدد اور بہت ہی بھیانک بیماری میں مبتلا ہو گئے, کیا تمہیں خدا سے شکوا نہیں تھی بولے تجھے اس میں جو اس نے مبتلا کیا؟ دنیا میں کروڑوں اربوں انسان موجود ہیں، ایک تم ہی کیوں ایسے ہو گئے جس کو خدا نے چنا ہے کہ اس متعدی بیماری میں ڈال دے، اور تم انٹرنیشنل فیم رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا تھا کہ ان خربوں انسانوں میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو کہ فٹ بال کھیلتے ہیں، اور ان تمام انسانوں میں سے چند ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پھر اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان میں بہت چند رہ جاتے ہیں جو کہ اپنے انٹرنیشنل لیول کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، اور جو چیمپئن بنتا ہے دہلی زندگی بھر وہ صرف ایک ٹیم ہوتی ہے۔ میں نے اس وقت اپنے خدا سے نہیں کہا تھا کہ تم نے مجھے ہی کیوں چنا ہے اس بلند مقام کے لیے، اس چیمپئن شپ کے لیے کہ مجھے انٹرنیشنل چیمپئن بنا دیا، اور آج میں اپنے خدا کو کیوں کہوں کہ تم نے مجھے ہی کیوں چنا اس برائی کے لیے، اس بری مرض کے لیے؟ انسان کے اندر، اگر انسان کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو ہو، اور یہ ضروری ہے کہ جستجو ہو، اور اس جستجو کے بغیر انسان کبھی بھی انسانیت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک انسان کے اندر جستجو ہے، یہ ایک انسان کے اندر تحرک ہے جو انسان کو ہمیشہ اس کے لیے ایک سفر میں گام سجا دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک وقت ایسا تھا کہ اتنے بہتر انسان کی زندگی میں نہیں تھے، لیکن چونکہ آج دنیا اس لہر پہ پہنچ چکی ہے کہ ہر جگہ پہ سلیکشن کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ پاپولیشن از گوئنگ ٹو انکریز ایکسپوننشلی ان دس ورلڈ، بٹ ریسورسز آر ویری ویری شارٹ۔ دنیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاس ریسورسز بہت کم ہیں۔ فادی پرٹیکولر ٹائپ آف ریسورسز یو ہیو ٹو سلیکٹ سم ون اونلی۔ I know that when I did my MSc and MPhil, there is no any test, just departmental test is there, only departmental test. But after MSc in 2002 and then 2004, there is a burden of, there is a huge number of tests are there, even in national level. At the national level, you can go to the other test, create open. اگر ہم موسٹ پرومیننٹلی اور ریلیزڈ ون گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ گیا ہے گریجویٹ ریوارڈ ایگزامینیشن، بٹ بہت سارے دوست ہم میں ایسے ہیں جو کہ ابھی ایف ایس سی کر رہے ہیں، ہاؤ مینی دیئر ہو ہیز ایم ایس سی، سوری ایف ایس سی، ہاتھ کھڑا کریں جو ابھی 12 ایئر ایجوکیشن میں فال کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ اینڈ دوز ہو پرفارمنگ 14 ایئر ایجوکیشن بی اے بی ایس سی گریجویشن، گڈ۔ دوز ہو آر پرفارمنگ ایم ایس سی ایم اے، ویری ایکسلنٹ۔ And those who are in MPhil, 1, 2, 3, only 3. And those who are performing PhD, anyone? Yes. So, actually after this test that I wanted to give you some coaching about that one. this is not my field. I am an assistant professor of chemistry. But I have some practice. Because I have cleared all these tests. अपने कैरियर में मैंने इनको क्लियर किया और मेरी खुशी के लिए मेरे काफी था कि मैं आपके दरमियान आऊँ ये शेयर करूँ कि ये कैसे मैंने क्लियर किया और नाउ आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. मैं एक दफा इस्लामाबाद गया, वहां पे आई थिंक जामिया फातिमा ज़हरा है क्या विश्वा लक्ष्मी साहब होते हैं क्या नाम है सदारे का जामिया कौशल कौशल यूनिवर्सिटी. लक्ष्मी साहब ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि इस्लामाबाद में आ जाए, हम आपको सी एस एस करवाते हैं. एट दैट टाइम आई वाज जस्ट एम एस सी, मैंने एम एस सी मुकम्मल की थी. तो मैंने कहा कि किससे करवाएंगे, उन्होंने कहा उन दोस्तों से करवाएंगे जिन्होंने एस सी एस एस किया हुआ है. जब मैंने उनसे उन्होंने एक बात बताई कि जिन्होंने कोचिंग सिर्फ करते हैं, जो खुद तो नहीं पढ़ सके लेकिन कोचिंग करते हैं, उनकी कोचिंग के अंदर वो असर नहीं होता है. पैशन सिर्फ आपको वही टीचर दे सकता है, वही कोच दे सकता है जिसने खुद परफॉर्म किया हुआ है. उन्होंने मुझे बताया कि जिनको हमने सी एस एस करवाया है वो सभी के सभी सी एस सी ऑफिसर्स हैं. आई थिंक आप समझ गए कि व्हाट आई वांट टू से विद यू. इफ आई हैव डन ऑल दिस थिंग आई आल्सो थिंक आप भी ये सब कुछ करेंगे. दोस्त वांट टू से हम सब कुछ ये करेंगे, हाथ बना गए. Have you always to do all these things?
Yes.
अगर आज है तो एक बार आवाज से सलाम हमारे पाकिस्तान के अंदर टेस्ट इज अ यूनियन रूटीन. हमारे हर अदारे के अंदर हर एक जगह टेस्ट एक यूनियन रूटीन बन चुकी है और ये रूटीन इसी वजह से है कि सीट एक होती है लेकिन अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं. बिकॉज मैं ऐसे अदारे से बिलोंग करता हूँ कि जहां पे मैं देखता हूँ कि हमारे पास अगर 50 सीट्स हैं तो देयर आर मोर देन 500 एप्लीकेंट्स. लेक्चर के लिए एक सीट आती है, यू कांट इमेजिन कि एक लेक्चर की सीट के ऊपर एप्लीकेंट 100 होता है. हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ कि हम इससे एलिजिबल हैं, कैसे हम एलिजिबल हो सकते हैं इस चीज के लिए कि अरे एक सीट है और 100 कंपेटिटर्स हैं. तो डेफिनेटली आई थिंक देयर इज अ ग्रूमिंग, ग्रेजुअल ग्रूमिंग. इंसान की जब तक ग्रेजुअल ग्रूमिंग नहीं होगी उस वक्त तक और ग्रेजुअल उसकी कोचिंग नहीं होगी देयर विल नॉट एबल टू गेट अ गुड रिजल्ट एट द एंड. एट द एंड वो गुड रिजल्ट अटेन नहीं कर सकता. इस हवाले से दो तरह के हमारे पास ऐसे इश्यूज होते हैं जिनसे ये टेस्ट रिक्वायर्ड होता है. वन इज योर एजुकेशन, योर स्टडी एंड अदर वन इज योर जॉब. अब तमाम टेस्ट हो या स्टडी या एजुकेशन हो, तमाम हवालों से टेस्ट इज वेरी नेसेसरी. हर स्टेप के ऊपर एक टेस्ट एग्जिस्ट रहता है. इसमें दो तरह का हमारे पास सेक्टर्स हैं, वन इज स्टडी एंड अदर इज जॉब. Job is another thing, so I will discuss later after these two things. स्टडी के हवाले से दो तरह के टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, वन इज एट इंटरनेशनल लेवल एंड अदर एट नेशनल लेवल. नेशनल लेवल पे बिकॉज मोस्ट ऑफ यू बिलोंग टू एफएससी एंड बीएससी एजुकेशन लेवल, अगर कोई एक बच्चा चाहता है कि मैंने एफएससी की है इन इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो इसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाने के लिए भी एक टेस्ट का सामना करना पड़ता है. फर्स्ट टाइम ये जो टेस्ट स्टार्ट हुए थे तो एट दैट टाइम आई वाज द फर्स्ट के 1998 में पहली दफा ये टेस्ट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किए गए थे इन 1998 में, 1998 में पहली दफा टेस्ट का आगाज किया गया था. आई वाज देयर इन दैट पहली दफा जब 1998 में मैंने एफएससी की थी उस वक्त इस टेस्ट पे अपीयर हुआ था मैं भी, बट आई डोंट नो हाउ टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, आई रियली डोंट नो. So at the FSC level, whether you are a student of FSC, whether you are pre-medical or PhD, you have to appear in first two tests. One is EGAT and other is MGAT. These are the medical colleges. और ये जितने भी टेस्ट है ये सारे के सारे आपके सिलेबस में से होते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं होता. जस्ट इंग्लिश के हवाले से थोड़ा सा वो बाहर से ठीक करते हैं ताकि आपकी कुछ इंग्लिश ग्रामेटिकली हमें पता चले कि व्हाट एट व्हाट लेवल यू असिस्ट. अदर थिंग दैट एक्चुअली अपीयर आफ्टर एफएससी लेवल इन अदर यूनिवर्सिटीज, आप ना तो कॉलेज में जाना, इफ योर एडमिशन कॉलेज में नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता आपका, आप ऐसे सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है. तो अब आप ये पहले दोनों टेस्ट जो है ये कोई अहमियत नहीं रहते. तो अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट इज नैट, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये टेस्ट हर उस यूनिवर्सिटी के लिए जो कि एनपीएस अदारे के साथ एसोसिएटेड है या ऐसे डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, ये अराउंड 129 के करीब यूनिवर्सिटीज पर अदारे बनते हैं जो कि एनपीएस के साथ नेशनल टेस्टिंग सक्सेस के साथ एसोसिएटेड है, और उनके अंदर नया टेस्ट दिया जाता है ताकि बच्चों को एडमिशन दिया जा सके. तो ये किस मकसद के लिए जाता था कि बच्चों की एनालिटिकल रीजनिंग, ग्रामेटिकल, वर्बल, ये सारी परफॉर्मेंस फिल्टर हो सके, कि दोज हु आर वेरी कॉम्पिटेंट वंस दे विल गेट एडमिशन इन देयर यूनिवर्सिटी. अदर इज गैट टेस्ट. गैट टेस्ट एक्चुअली परफॉर्म एट टू फॉर टू लेवल्स, वन इज फॉर एमफिल लेवल टू गेट एडमिशन इन एमफिल, या फिर ऐसी वो स्कीम जो कि एचईसी स्कॉलरशिप के तहत दी जाती है उनके लिए एडमिशन के लिए गैट टेस्ट इज नेसेसरी थिंग, विदाउट गैट टेस्ट यू कांट टेक एडमिशन एनी यूनिवर्सिटी. तो गैट टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ओनली फॉर एमफिल, नॉट फॉर एमएससी, नॉट फॉर बीएससी. ओके, नैट टेस्ट एक्चुअली एमएससी लेवल के लिए दिया जाता है. नैट टेस्ट दो लेवल पे होता है, एक 14 ईयर एजुकेशन के बाद एक 12 ईयर एजुकेशन के बाद. खास कर आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से दो तरह के डिसिप्लिन मूव कर रहे हैं, वन इज बीएस एंड अदर इज एमएससी सिस्टम. बीएस के लिए भी नैट टेस्ट दिया जाता है और एमएससी के लिए भी नैट टेस्ट दिया जाता है, हजार के दोनों टेस्ट ये एक साथ लिए की बाया. अदर इज गैट टेस्ट, ये गैप टेस्ट फर्दर एजुकेशन के अंदर एफएल पे आप मूव करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लियर दिस गैप टेस्ट. इसमें भी दो तरह के हवाले से होते हैं, एक 6 ईयर एजुकेशन के बाद और एक 18 ईयर एजुकेशन के बाद गैप टेस्ट किया जाता है. तो ये टेस्ट फॉर एम फिल या पी एच डी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आई से ऑफर है जी मैट रिजल्ट एंड जी आर ई है। आप जी आर ई से मैं फैमिलियर है, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर नॉट फैमिलियर विद जी आर ई ग्रेजुएट रिलाफ एग्जामिनेशन। So because time is very short, so I want to explain all these things very quickly. Other is gap. Gap is the system of two things, people in mind. One is a general and other is a subjective. General gap test actually performed after 16 years of education. So much of the education, MSc ke baad. Gap test performed karaya jata hai, agar aap MPhil mein admission lena chahte hain. Lekin if you want to get in PhD admission, you have to perform another 2 years in MPhil. Aapko MPhil karne ke baad, aapko gap test ke liye karna padega. This is just like GRE examination. Ye bilkul GRE examination ki tarah ka hota hai, jaise GRE examination. Ye 18 years of education ke baad hum dete hain. GRE ke general hum जनरल गैप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन क्राइटेरिया बिकॉज ऑन दी बिहाफ ऑफ के बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जिनमें मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, उनको कंपनसेट करने के लिए इट कंसिस्ट ऑफ मेन थ्री पार्ट। फॉर इज बिजनेस एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें जस्ट डिवीजन ऑफ मार्क, डिवीजन ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली मैटर करती है बिटवीन इंग्लिश एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव। लिहाजा 30% business, 40% analytical and quantitative, then the mathematical portion is 30%, and like that, this one. So you think that like a test of gap in this award करते हैं? आप यहाँ पर humanities and social sciences में आप देखें कि English को first 50% इसलिए दिया जाता है कि they don't know about the mathematics and analytical reasoning much more. So due to this reason, more portion of the paper consists of English 50% of it. And other is that see that is agriculture, meteorology and sciences, biological and medical sciences can use the mark campaign. And it contains about 40% English and rest of equal percentage of analytical and quantitative. Quantitative actually mathematical portion is there. Yeah. Sorry. इसमें जो टोटल क्वेश्चन है दैट इज देयर आर ओनली 100 क्वेश्चन एंड ओनली 120 मिनट्स आर देयर टू अटेम्प्ट ऑल दिस थिंग्स। सब्जेक्टिव, इसमें टोटल क्वेश्चन 100 है लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ टू क्वेश्चन, वन इज जनरल क्वेश्चन एंड अदर इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन में देयर आर 15% योर इंग्लिश टेस्ट एंड 15% योर एनालिटिकल टेस्ट। एनालिटिकल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट ईच डिसिप्लिन, ईच लेवल ऑफ लाइफ। आप भी आई थिंक एनालिसिस तो होते हैं, आप भी कभी से नीट एनालिसिस किए आप लोग? इंसान की लाइफ एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इंसान के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग के तहत डिसीजन नहीं है तो इंसान इंसान नहीं है, यू नो। चलिए आपका टेस्ट लेते हैं आगे। यस, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम सफर करें बाहर? कौन चाहता है कि ना इलाके में जाए? तो फॉरवर्ड पर्पस स्टडी के लिए ये एक छोटा सा मैंने कंपैरिजन यहाँ पे शो किया है कि इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, आपके जहन में काफी फैक्टर होते हैं। वन फैक्टर इज दैट कि हम स्टडी करेंगे, सेकंड फैक्टर इज दैट कि हम साथ साथ कमाई करेंगे, और थर्ड फैक्टर इज दैट कि वो हमें अफोर्ड करेंगे, हमारा खर्चा वो बर्दाश्त करेंगे। एंड सच टाइप ऑफ फैक्टर्स आर देयर। सो देयर आर फोर मेन कंट्रीज for their settlers, where you want to go. One is a US. Don't get there. The US is
there.
यूके के हवाले से आपके पास कुछ स्लोगन है कोई कोई इसका मतलब है कि बेस ओपन था यूके के लिए आपके लिए रास्ते खुले यही ना मतलब है ना आपका बहुत बड़ी कुछ नहीं होता मैं हकीकत कहता हूँ जरा एनालाइज कीजिएगा घर जा रहे कि कितने लोगों को अमेरिका का वीजा मिले स्टडी के लिए और नहीं जाए अकेडमिक कैरियर वीजा रेगुलेशन कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप्स जो सबसे ज्यादा एक्सेलेंट सिटी है विद रिस्पेक्ट टू अकेडमिक With respect to academic, that is United States. The USA has the education boom in technology, in advance, it says. आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है जिसमें आपका बात कह रहे हो बहुत ताकतवर है अब आप कहोगे कैसे ताकतवर है देखिए दुनिया की इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है आपके एजुकेशन आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर और जिन्होंने यूएसए को मुर्दाबाद कहा है उन्होंने यूएसए को वाकई तहस नहस करके रखा है ईरान ने मुर्दाबाद कहा ईरान ने कौन से नहीं फेल से बताया कि तुम वाकई मुर्दाबाद हो If you see the first sector, completely full, fit with the blue color, the accident, damaging the accident in the US. When I was in London, आपको छोटा सा बता देता हूँ कि मुझे ऐसा कोई मुआशरा लगा जैसा कि मेरा अपना राउंड वर्ल्ड पाकिस्तान या मेरे सिटी है एजुकेशन थी लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी मुझे भी यूएसए ऑफर हुई थी फाइल ऑफ फाइल इंफॉर्मेशन फॉर पीएचडी एवरीथिंग इज देयर बट आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर यूएसए यूएसए फॉर वीजा मुझे हायर एजुकेशन कमीशन ने स्कॉलरशिप दिया फाइल यूएसए लेकिन आई ट्रैवल टू वर्क यूके यूएसए की तरफ नहीं गया जाना नहीं चाहिए ऐसी भी बात नहीं है क्या क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए आप सच बात है पहले आप कहे कह रहे थे नहीं जाना आप कहते हैं जाना आगे ये कुछ कॉस्ट इफेक्टिव कंपैरिजन है बिटवीन ऑल दिस वन चीज तो ऑस्ट्रेलिया में अराउंड अबाउट 8 लाख और सबसे ज्यादा जो खर्चा आता है यूनाइटेड स्टेट में अपने अगर आप प्राइवेटली वहाँ पे वर्क करते हो या प्राइवेटली अपने आप को वहाँ पे स्टडी में इंडल्ज करते हो लेकिन अगर आप अपने सेक्टर या यूनिवर्सिटी से अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो फिर भी आपका 9.49 लाख बी के लगभग खर्चा आता है तो दिस इज अ कंपेरिजन दिस का कंपेरिजन सो मच पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करते हैं जिसको जो कि आपको हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफाई करवाते हैं ताकि आप वहाँ पे जाके स्कॉलरशिप के जरिए स्टडी करो पाकिस्तान के अंदर ओनली वन इंस्टीट्यूशन इज देयर दैट गिव यू फुल फ्लेज स्कॉलरशिप दैट इज हायर एजुकेशन टू मिनिस्टर देयर आर अदर मेनी स्मॉल इंस्टीट्यूशंस आर देयर जो कि चाहते हैं कि स्कॉलरशिप देने को इतना लंबा चौड़ा स्कॉलरशिप देते नहीं है जस्ट हायर एजुकेशन अफोर्डिंग ऑल दीस थिंग्स लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फुल ब्राइट कमीशन है फुल ब्राइट कमीशन ओनली एंड ओनली गिव यू स्कॉलरशिप फॉर यूएसए नॉट फॉर एनी अदर कंट्री यूएसए के लिए देखता है। अगर इस यूनाइटेड नेशंस है, कॉमनवेल्थ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आदि से भी स्कॉलरशिप, लेकिन इन स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? यू हैव टू बी देयर फॉर योर टेस्ट, दैट इज जीआरई अबाउट फॉर एग्जामिनेशन। इसमें नेक्स्ट वीडियो टॉपल जो है देयर इज ऑफ इंग्लिश के लिए क्वालिफाई कि आप इंग्लिश के लिए क्वालिफाई करते हो, इसलिए आपको ये एक बैरियर है जो आपको पास करना होता है फॉरन एजुकेशन, ये जस्ट फॉर इंग्लिश के लिए और किसी चीज के लिए ज्यादा इसका स्कॉलरशिप के साथ कोई जरूरत नहीं है। आइट्स हो गया या ये टॉपल हो गया, इट ओनली गिव यू एंट्रेंस टू क्लैरिफाई योर कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जामिनेशन, ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोगों को स्कॉलरशिप दिए जाए। तो इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जीआरई के लिए जरूरी होती है। यस, जीआरई एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट एसे राइटिंग, तो जो मैं चाह रहा था इतने वही हुआ है कि एक दो दिनों से उसको बता रहा था कि हाँ भाई कहीं कंपाइल आप टाइम इज वेरी लिमिटेड, 20 मिनट्स में आए थे यही हो सकता था। तो ना अभी रिक्वेस्ट आई है कि आफ्टर नमाज, तो मैं भी ये चाहता था कि आफ्टर नमाज ही अभी इसको अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं इसको स्किप करूँगा तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो एट दिस मोमेंट वो आया हूँ कि जी आई एग्जाम जो है जस्ट इस पर्पज़ से भी दिया जाता है कि जितने भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं उनको अवेल किया जाए फॉर हायर एजुकेशन। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको पास करना, जस्ट एक सिस्टमेटिक वे है टू हैंडल ऑल दी स्टडीज। और ये जो टेस्ट है जी आर ई, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर के ऊपर दिया जाता है, लिहाजा बुक्स के ऊपर या पेपर के ऊपर इसको राइट अप नहीं किया जाता, कंप्यूटर के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है और उसी के जरिए से इसको उसका रिजल्ट आपको फॉलो मिल जाता है। इसमें चार पोर्शन होते हैं जी आर ई में। जो पहला पोर्शन है जो दैट इज ऐसे राइटिंग, ऐसे आपको दिया जाता है कि किसी इशू के ऊपर जस्ट आपको एक इशू दे दिया जा सकता है, वहां पर ऐसे पाकिस्तान के कायदे आप जरा इसके ऊपर राइट अप करें कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है भी या नहीं है, अगर है तो किस तरह की डेमोक्रेसी है, दिस इज एन इशू। Another issue is galvanization, another issue. पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इशूज एक्चुअली एग्जिस्ट। द मोस्ट रेलेवेंट इशू जो कि आपके खिते के इसको बनाने से आपके साथ रिलेट करता है, उस हवाले से डिस्कशन की जाती है, इसके ऊपर आप राइट करें, राइट अप करें। तो दिस इज 30 मिनट का ये इशू ऐसे की शक्ल में आपने लिखना है, आपने आलबूम में भी कर देनी है। अगर एक इशू जो आपको दिया जाता है दैट इज ऐसे आर्गुमेंट आपने करना है, दैट इज नॉट इशू को डिस्कस नहीं करना, अब आपने आर्गुमेंट देने हैं अनदर इशू जो दूसरा आपका एक ऐसे होगा उसके हवाले से, जस्ट आपको आर्गू किया कि आप ये काम हो चुका है, आप इसके अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, इसके हाथ में भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, जस्ट यू हैव टू गिव आर्गुमेंट्स, नथिंग एल्स। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इशू। इसमें देखें कि एक्चुअली दे आर सिलेक्टिंग द पीपल कि आप क्या सोच रहे हो, आप किस हवाले से इसका डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग क्या है, एक्चुअली क्या आप फिल्टरिंग हूँ, आपको फिल्टर कर रहे हैं और आपकी जो फिल्टरिंग क्रीम है वो अटेन कर रहे हैं। और ये जितने भी क्रियान हम पास करने के बाद जो हमें स्कॉलरशिप मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर, ये फुल फ्लेज स्कॉलरशिप होता है, ये 4-5 साल के लिए होता है। और 4-5 साल वहां गुजारने के बाद आपकी जो माशाल्लाह जहनी कैफियत होती है वो मशीनरी हो जाती है। मशीनरी समझते हैं, मशीनरी करी होते ना हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अदारे ऐसे जो मशीनरी करी देते हैं, क्रिश्चियन हवाले से निजाम तरीन उन्होंने रखा हुआ है। किस किस पर है सिस्टम का, तो इस तरह ये बहुत सारे इस तरह की यानी कि सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन और अपनी थिंकिंग इम्पोज करना, अपना कॉन्सेप्ट इम्पोज करना, अपना वे ऑफ थिंकिंग आपको बताना है कि हम इस हवाले से थिंक करते हैं, आप इस हवाले से थिंक करना शुरू कर दें। तो दिस इज तो सब टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन करते हैं दो एसेस की मदद से कि आप कैसे सोचते हो। अदर इज वर्बल रीजनिंग, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस और हर सेक्शन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 20 क्वेश्चन होते हैं पास सेक्शन और 20 मिनट पास सेक्शन के हवाले से। वर्बल भी आपके इंग्लिश है, आप इस इंग्लिश में दो तरह के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं, आपका ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी वैसे आमतौर पर जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपके क्वान्टिटेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं या आपके सिलेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप हो सकते हैं कि आप कैसे उसको एनालाइज करके उसको हैंडल करते हो, लेकिन होगा सारा इंग्लिश बेस्ड है। तो इट कम्प्लीटली एक्चुअली बेस्ड ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश नॉलेज। अदर इज क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, ये क्वान्टिटेटिव रीजनिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस हवाले से कि आपको वो ये देखता है कि ये एक इसके सामने प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को किस तरह जज करता है, किस तरह इसको देखता है, किस एंगल से देखता है और कैसे इसका एनालाइज करने के बाद एक रिजल्ट आउट करता है। और उस रिजल्ट की बेस के ऊपर अब आप क्वेश्चन जब उसका आंसर दोगे तो जज कर देगा कि अब आपके जहन में क्या है। ये टेस्ट इसलिए ना समझेगा कि जी आर ऐसी बात मैं ऑन द बेसिक ऑफ फैक्ट्स बात कर रहा हूँ। देर आर सो मेनी माइंड पुलिस जो अभी ये जा रहे थे वो एचईसी के स्कॉलरशिप के वो बाहर जाकर पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के बाद वो वापस आए, अब वो दोबारा यहाँ पे मिलने का काम नहीं है यार। जो वहां का सिस्टम है वहां का मसला वहां पे है, यहाँ पे नहीं है। तो देखो माइग्रेंट जो सब कुछ आपको स्पेंड करेगा, सब पैसा खर्च कर रहा है, आपको एजुकेशन का आपको क्रांति से आश्रा कर रहा है, क्या वो चाहेगा कि वापस चला जाए? पांच साल गुजारने के बाद वो चाहते हैं कि आप आपको इंडेफिनेट वीजा देते हैं, आप स्टे हियर, आप यहाँ काम करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि परिस्थिति ये जितना भी परिस्थिति है इसके जो जितने भी ये लोग हैं वो यहाँ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, इनका जो इंटरनेशनल लेवल है वेरी हाई, इंटरनेशनल लेवल बहुत ज्यादा है, लादा इनको वहाँ पर निकालना है। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जहाँ पे इनकलाब की जमीन बोल सकते हैं, इंकलाब अगर आ सकता है फिकर में तब्दीली आ सकती है, तो ये वो जमीन है जहाँ से सब कुछ हो सकता है, तो लादा इनको एक्सेप्ट है। पर मकसद ये है कि आपने जी आई तो करना है, ठीक है, तो जी आई करने के लिए अहम यानी कि जरूरत है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का पता चलता है कि कैसे आपके ऊपर
आने वाली स्ट्रेस को हमने मैनेज करना है. वर्किंग विद अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर है, देयर इज नो एनी अदर थिंग, उसी के हवाले से आपको काम करना है. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी हमें जरूरी है. ऐसा बात है, ये नहीं कि जो हमारा नॉलेज है हमारे पास ये है, नहीं भाई, हमें कुछ और सोर्सेज भी देखने चाहिए कि क्या उस हवाले से मैं ये बात नहीं कर रहा. अगर हमारा नॉलेज की तरह इसमें काबिल नहीं है और हम सही तरह से उसके जवाब नहीं दे सकते, देयर इज मैनी अदर रीजन, कि हो सकता है कि और रीजन भी हो, हमें इस हवाले से भी इसको सोच रहा है इलाज अटेम्प्ट किया. तीन बहुत अहम चीजें इसको अटेम्प्ट कर देती है. एक बार का प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, नेवर लीव नेवर सी एनी स्मॉल थिंग. एक छोटे से छोटी चीज को याद ना छोड़े, बल्कि उसको भी हैंडल करने की कोशिश करें. कंसेप्ट में अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वेरी गुड. अप्रोच आपकी क्या होना चाहिए, देयर आर टू अप्रोचेस इन दी योर वन इज कन्वेंशनल एंड अदर इज स्मॉल अप्रोच. कन्वेंशनल ये है कि आप सोच करते हैं, उसको आगे हल करना शुरू करते हैं, लेकिन ठीक है. लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है, इसमें बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन आप करना शुरू करते हैं, या इसके बाद हम रिलीशन स्टार्ट करते हैं, अगर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर हमारा ये नहीं हो सकता है. इस हवाले से सब कुछ के बाद हम कहते हैं रिलैक्स कर देते हैं, ये भी हमारे व्यायाम के ऊपर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ जो रहेंगे अपनी में सेल्फ थिंक कर देते हैं, कुछ के बाद इस बार नहीं कुछ. ये दो चीज़ें आप इंग्लिश जो आपका पोर्शन है, तो दो चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं, दो चीज़ें आपके अंदर एग्जिस्ट करती है. वन इज़ योर वोकैबुलरी एंड कैपिटेशन, आपके पास भी कैपिटी, और आपको ये पता कि हमें इसको कहाँ पढ़ाई करनी है. एक कला मिलते हैं जिसको कहते हैं कि राइट टाइम टू यूज राइट वर्ड, ये इंग्लिश की किताब है, ये आपके पास एक वर्ड है, आपको राइट टाइम और राइट प्लेस समझ उसकी यूटिलाइजेशन, यही सही इंपॉर्टेंट है. और ये आपको जाहिर है कि आपने अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, बहुत दुनिया का मुकाबला है, विश्व आपका बहुत बड़ा है, तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने किस तरह इसको फॉलो करना. कैपिटी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अगर आप जी आर ई करना चाह रहे हैं तो कैपिटी को हाथ से ज़्यादा ज़्यादा नहीं होती, दूसरे पे आप मैन हॉट साफ इस्तेमाल करें. किसी ने कहा था कि पाकिस्तान की एक अखबार बहुत है, उसको पढ़ा करें तो आपकी कैपिटी बहुत ज़्यादा दी न्यूज़ डॉन इज एक्चुअली अप लेवल, डॉन की जो लैंग्वेज है वो अप लेवल की लैंग्वेज है, ठीक है. ये आमतौर पर जो एम्बेसडर्स हैं इस लेवल की, लेकिन जो दी न्यूज है वो हमारी लैंग्वेज के हवाले से, जो पाकिस्तान में भी लैंग्वेज के हवाले से दी न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप प्रोसेस चली जाइए, इन शाला आपको और भी ज़्यादा इनाम. रीडिंग स्किल, आपकी रीडिंग स्किल बहुत अहम है कि आप कैसे चीज़ों को जितनी जल्दी पढ़ने की सलाहियत रखते हो, उसको एनालाइज करने की सलाहियत रखते हो, इसको भी आपने अडॉप्ट करना है. इसमें कुछ बुक्स हैं जो आप बेसिक बुक है, कप्रान के जी आर ई मैथ एंड नंबर डॉट बुक्स हैं, नोवा जी आ रही है, इंस्टेंट जी रिव्यू जी आ रही है, एडवांस बुक में पेरेंट्स आ जाते हैं, बिग बुक आ जाते हैं, प्रोग्राम जी आ रही है, प्रोग्राम के हवाले से कुछ बुक्स हैं, आप ये उनको स्टडी कर सकते हैं, तो आपकी जनरेशन जी आ रही है. ओके, आपने तैयारी कैसे स्टार्ट करनी, बुक्स आपने नहीं, आपको पता चल गया कि वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, थिंकिंग ज़्यादा होनी चाहिए हमारी, एवरीथिंग इज गुड, सो हाउ इज स्टार्ट. सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है. देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स इन वोकैबुलरी पार्ट, वोकैबुलरी आप जस्ट आप वोकैबुलरी ले रहे थे, वोकैबुलरी के हवाले से हमने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा से प्रैक्टिस करें डेली लाइफ के अंदर. आफ्टर दैट आपका सेक्शन टेस्ट है, जब आपने सब कुछ स्टार्ट चुके हैं, मैंने एग्जाम्पल दी है कि वोकैबुलरी जस्ट वाइज वोकैबुलरी आप क्वांटम को स्टार्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एनालिटिकल एनालिसिस को आप स्टार्ट कर सकते हैं. इस दौरान जो दोनों आपके सेक्शन है, इसको आप स्टेप बाई स्टेप तैयार करें और आपको मैं टेस्ट दूँ, उसको टेस्ट करें कि मैंने कितना अच्छा किया है. तो आपको सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि जो बहुत ईजी टेस्ट है आप उनको परफॉर्म करना स्टार्ट करें, एंड ग्रेजुअली गोइंग टू मूव योर टफ टेस्ट, कि जो टफ है उसी तरफ मूव करें. और दूसरी बात, कोशिश ये करें कि आप कंप्यूटर में संभालें, इसको इस्तेमाल करें स्क्रीन पर, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें कि दबाव को कम से कम, लेकिन स्क्रीन के ऊपर ज्यादा आपका, क्योंकि आप जो पेपर देना जो टेस्ट देना डेली स्टोन की कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा और एक लिमिटेड आया होगा, वो फोन बंद हो जाएगा उस टाइम के बाद, डेली जो भी आपके पेपर खींचने नहीं आएगा ना, आपको कहेगा कि पाँच मिनट और आपके पास ना, नहीं आपको टाइम पास दिन मेरा आपको उसी में आपने खत्म कर, और एक पदक में एक ही क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसी के ऊपर आपने तीन तरीके आपने मुकम्मल करना है, और दूसरा सेक्शन भी, सेक्शन भी एक होगा, उस सेक्शन को आपने मुकम्मल करना है, ये बहुत अहम चीज़ है। लिहाजा इसका मतलब क्या होगा कि आपने प्रैक्टिस कब अगर करनी है कंप्यूटर भी करते ज़्यादा से, तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन मुकम्मल कर चुके हो तो एक्सप्लेनेशन चेक करनी है, जो आपने एनालिटिकल रीजन से पिक किया कि इसमें आपने पिक किया वाले जो आपने जो आंसर दिया आंसर है वो कौन सा आंसर दे रहा है, उसकी रीजनिंग क्या होने वाला है, वो भी आपने चेक कर दी। यस अच्छा, ये मैंने ऐड किया क्योंकि जी आई इतना बहुत लंबा लेक्चर नहीं था, मैंने जस्ट ये ऐड किया आपसे कुछ आपसे शेयर करना चाहता था। ये आइन पहले जाइए थी लेकिन मैंने याद हूँ कि उसको आखिर पे नहीं गया उसके बारे में, हम कैसे बहुत सारे लोग आप सारे आप इस चीज़ में फर्स्ट क्लास की हुई है, ट्रैकर्स की किसने की हुई है, फातिमा है सब सेकंड क्लास किसने की है, मैटर किसने की है, मैटर भी सभी ने की है। अच्छा मुझे एक बात बताए, जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, एक बैठे क्लास करते हैं तो आफ्टर दैट फिर तरीका है ताकि सारा क्लियर और ठीक करें और ठीक करें बस। अच्छा मुझे एक बात करें, मैंने जस्ट आपके लिए स्केच बनाया आपको कह रही आप हिस्सा आई हो, उसके बाद मैं थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन करूँगा ताकि आपके एनालिटिकल रीजनिंग चेक करना चाहता हूँ। 16 ईयर और 14 ईयर की एजुकेशन के बाद पहले ऐसा नहीं था, पहले भी होता था लेकिन 14 साल की स्टडी के बाद या 12 साल की स्टडी के बाद बहुत सारे लोग जिस तरह मूव करते थे बॉटम की तरफ मूव करते थे। मैंने एक साल के लिए सॉरी मेरे पास वो भी नहीं है, एक लाइन लगाई है लिखा हुआ है क्लाइमेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, लिखा हुआ है साइड पे क्लाइमेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कि कोई इंसान कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, पढ़ने का मन अच्छा है ओके, लेकिन पढ़ने के बाद फौरन लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर ऑफ पास इसकी तरफ मूव करके जॉब की तरफ दौड़ते हैं, और जॉब में कौन सी मिलती है, मैंने लिखा पहले फैक्ट्री है, स्कूल मास्टर, बिजनेस और इक्तदार। पहले तो शायद 14 साल की एजुकेशन भी जरूरी नहीं था इक्तदार के लिए, लेकिन अब जरूरी है इसलिए मैंने 14 साल के बाद इक्तदार का अपनी इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों के ऊपर इक्तदार के लिए 14 साल की एजुकेशन भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत रिस्पेक्ट की है इनको उस लाइन में रखा हुआ है जिसपे टीचर भी है, ठीक है, बहुत लंबी लाइन किसकी तरफ दौड़ पड़ती है, जॉब की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन उनमें से कितने लोग हायर स्टडीज की तरफ मूव करते हैं, बहुत ज्यादा धीरे लोग, लेकिन अगर वो बैरियर भी क्रॉस हो जाए एम फिल का बैरियर भी, एम फिल मीन नॉट एम फिल, एम फिल मीन देयर आर मेनी अदर स्टडीज ओके, उसके बाद पी एच डी तक दौड़ चलती है, लेकिन पी एच डी तक पहुंचते पहुंचते बहुत थक जाते हैं ऐसे है। लेकिन मेरे बच्चों मेरे दोस्तों बरादर ये सारी चीजें जितनी भी है आपने देखा कि यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, किसको ख्याल है कि इस तरफ जाए क्लाइमेक्स की तरफ जाए, ये सारी जी आर स्टडी है, ये सारी गैप स्टडी है, मैं भी नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन कौन है जो कि इन सारी लाइनों को छोड़ दे और कहे कि मैं नहीं हाई टाइम करता, और ये क्या है नेट आई रिलेशन बिल्डिंग नॉट नेट आई बिल्डिंग, ठीक है, ये है रिलेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत कम जाते हैं। अब कौन नेशन बिल्डिंग करेगा जब हमारे पास एनालिटी का रीजनिंग बहुत ज्यादा होगी, हम एनालिसिस करने की ट्राई करते हो, हम एनालिसिस नहीं करते। क्यों एनालिसिस नहीं करते हैं? बस ठीक है, जो हम मिल रहे हैं ये काफी है, जो हमें अपने तरफ पीछे लगा रहे हैं ये काफी है। नेशन बिल्डिंग के लिए इंसान की थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपको क्लियर होगी, मेरा ख्याल बहुत क्लियर होगी, ताकि इसको मैं थोड़ा सा कंबाइन कर सकूँ, इसके बाद मैं जो करूँ बहुत एक अहम है। ठीक है, आवाज़ आ रही है देर होगी, स्मेल भी आ रही है। सलाम छोटे होते थे ना जब हम तो वादे हमें पहेलियाँ बजाया करते थे, आज मैं आपको एक पहेली बजा करता हूँ, शायद आपने वो एग्जाम्पल सुने लेकिन मैं इसको पहेली का नाम दे रहा हूँ। एक नकल आ रहा है, वो से सुनिएगा, और उसके पास एक तारी है और वो एक दर्द काट कर जाता है, जंगल में जाके दर्द काट रहा है, आदमी काम नहीं कर रही। किसी ने कहा कि इसका एक हाथ तो ये है कि ऐसे ही चलाते रहो ये कट जाएगा दर्द, उसी ने कहा कि दूसरा हाथ ये है कि दर्द वाले को लेके प्रधान के पास और इसको तेज करेगा ले गया फिर दर्द का। मुझे आप बताओ विच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट और रीजनिंग आपके सही में होनी चाहिए, कौन सी? जो ये कहते हैं कि उसे उसी आरी से काटते रहना चाहिए हाथ खड़ा करके, जो ये कहते हैं आप पहली ऑप्शन पे, आप भी पहली ऑप्शन कि उसी आरी से काटता रहे जो कुंड है खराब है काटने की सही सलाहियत नहीं रखती है, उसका हाथ दे के पसीने छुटी हो रहे हैं, उसका हाथ दे के एक सुजेशन देने वाले ने कहा कि इसका हाथ ये है कि इसी से काटते रहो थक जाओगे, लेकर जाओ जहाँ इसको तेज काट। सिर्फ दो स्टूडेंट ने कहा कि वो पहले वाला पहुंचे, अच्छा काटता रहे, ठीक है काटता रहे, बस काटता रहे, और एट दी एंड क्या होगा? फिर तकरार की बात है, ऐसे एनालिटिकल रीजनिंग ये क्या कहती है ना? अब आपने कहा क्यों दबा के आपने कहा दूसरी ऑप्शन, तो जो दूसरी ऑप्शन कहते हैं वो हाथ खड़ा है, सही वेरी गुड। कौन ये बताएगा कि दूसरी ऑप्शन करेक्ट है और उसकी बेस नहीं है? जी आप बताएं। अगर घर जाएगा जाके उसको तेज करवा के ले आएगा उसका एफर्ट बच जाएगी, उसकी थकावट दूर हो जाएगी। हो सकता है उसी वक्त के अंदर वो भी दो चार काट रहे हैं, उसी एक काटने का अच्छा करेगा, बाकी तब काटोगे जब ये तेज हो जाएगी। ये चीज एग्जिस्ट करती है, अवश्य है। अब मुझे एक बात बताओ कि इंसान माशाल्लाह एक वक्त ऐसा था कि जब आईएसओ का कन्वेंशन होता था तो बहुत लोग होते थे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट। और आज चूंकि ये आईएसओ है ही अमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स की जमात है और स्टूडेंट की थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा है। मुझे एक बात बताओ, एक और रीजनिंग आपको देता हूँ, ये भी एक और रीजनिंग आपको मैं देता हूँ छोटी सी। अगर मैं ऐसा करूँ कि एक पाकीज़ा चीज के अंदर कोई नजर चीज डाल दूँ तो पाकीज़ा नहीं है, नजासत में बदल जाएगी। या बहुत सारी पकीजा चीज के अंदर छोटी सी नजासत डाल दो तो फिर क्या बहुत अहम और बहुत ही पकीजा चीज को एक नजासत के अंदर डाल दो तो फिर। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, अक्सर आता है और छोटा मैंने कहा कि बेसिक प्रिंसिपल को देते हैं जी आ रही है, बताओ प्लस और माइनस माइनस होते हैं या प्लस होते हैं? सभी बताओ यार, माइनस ही होता है। मुझे एक लोगों की बुरे की दोस्ती बुरा लगे लगती है अच्छा लगता है, बुरे को अच्छा करना हो तो कैसे किया जा सकता है? उसके रंग में डाल के या उसको हमेशा नसीहत और वास करके, या आपका उसके अंदर करदार आपने अपना करदार उसके सामने बयान करते, बताओ मुझे। मुझे एक बात बताओ, आप एनर्जी और रीजनिंग आप अच्छी डाल रहे हैं माशाल्लाह, जिन कारण के आपके साथ और थोड़ी सी डिस्कशन हो रही है। एक और बताओ, थोड़े दिन पहले तहरुल का आदमी गया कहाँ पे, इस्लामाबाद में, अपनी शख्सियत को बयान कर सका या किसी की दलदल में खुद भी गिर गया, खुद दलदल के अंदर गिर गया, ऐसे हुआ ना? बताओ उसे अच्छा किया या बुरा? मुझे एनर्जी चाहिए आप बच्चों से, आप सरमाया हुए नहीं कौन का उसे जी
अच्छा कैसा,
उसके अच्छा नहीं था
सारों की जवाब होने चाहिए
अच्छा नहीं चाहिए। और उस साल के साथ नुमाइंदा आके वापस लौट आया कि ठीक है मुझे तुम्हारी शर्तें कबूल है, अच्छा नहीं
जो भी रूल होते हैं उसमें चेंज के साथ
जी। तो ऐसा तो फिर ऐसा होगा जी जी, आप क्या कहते हैं
सर? जो उसका कहते नजरिया का जो पॉइंट्स थे वो तो उसने मनवा लिए थे और आप जो जानकारी वगैरह चेक हो रहे हैं ये तो उसी की वजह से हो रहे हैं।
अच्छा मुझे ये बताओ, इमाम हसन अलैहि सलाम की जो सुनो है मुआविया के साथ मुआयदा हुआ था, इमाम हसन ने हुकूमत के अंदर अपने आप को पेश कर दिया था या हुकूमत से बिल्कुल अलग हो गए थे? ठीक है बताओ मुझे क्यों उन्होंने अपने आप को रखा था वो मुआयदा हो गया था मुआविया के दरमियान और इमाम हसन अलैहि सलाम के दरमियान, लेकिन क्यों उन्होंने अपने आप को रख कर दिया? पता था कि वो ज्यादा मुकरा है। ठीक है नुसरत करने वालों की कमी की वजह से। मुझे आप बताओ जरा, मैं जस्ट आपसे नसीहत चाहता हूँ, आज की हुकूमत आज का दौर कैसा दौर है? मैं आपसे मांगे दोनों चाहता हूँ यार, आप बताओ मुझे। मैं ऐसे चाहता हूँ आप जितने अहम पढ़ने आ गया आप, हमें इन लोगों के साथ अनहार करना चाहिए कि अगर बस रख जाना चाहिए या अपनी शख्सियत को खुद बयान करना चाहिए कि हम कुछ है, अपनी शख्सियत को अपने करदार को इनके सामने पेश करना चाहिए, इन्हें यह बताना चाहिए अपने करदार से कि तुम गलत हो हम ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना। वो अलामा तबारा मुझे शेर यहाँ पे याद आ गया कि अल्फाज और मानी में तफावत नहीं लेकर, अल्फाज और मानी में तफावत नहीं लेकर मुन्ना की अजा हो मुजाहद की अजा हो, आप मुन्ना बनना चाहते हैं या मुजाहद बनना चाहते हैं? तो मेरे रात रात तीन मिनट बाद आपके सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ मसला ये है कि हमारे अंदर सुकून ऑफ थॉट जो बनने चाहिए थे वो नहीं बन सकने लगा। आज हम क्यों बहुत सारा मुश्किलात का शिकार है, हमारे अदारे नहीं, हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं, हमारे की तय प्राइस नहीं बनते। दिस इज द रीजन कि आज हम 10,000 के छोटे खा रहे हैं।
मर्कज भी नहीं है हमारे पास,
हमारे पास सही तरह से मर्कज भी नहीं है। आप एक बात बता दो छोटी सी, जमात इस्लामी हमारे साथ कुछ बहुत सारा इनका इख्तलाफात है और बहुत सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं, बहुत सारे इदारों के अंदर हुए, इनसे मुबादला करना पड़ता है, मुबादला करना पड़ता है। पता ना आपको, मुझे एक बात बताओ क्या उनके पास अदारे हैं या नहीं
है,
उनकी यूनिवर्सिटीज हैं या नहीं
जी है।
मुझे एक बात बताओ आपके पास कितनी यूनिवर्सिटीज हैं।
हमारे पास यूनिवर्सिटी
एक यूनिवर्सिटी, मुझे बताओ कि आपके पास कितने थिंक टैंक टैंक अदारे हैं, बताओ। यार मुझे समझ नहीं आती है कि आप जैसे मोलवान स्टूडेंट, आप जैसे मोलवान क्रीम, आप किस तरफ किस रमश की तरफ मूव कर रहे हैं। आप क्यों अपने बुजुर्गान को नहीं कहते हो कि हमें वो चाहिए जो हमारी जरूरत है, हमारी कौम को जिस चीज की जरूरत है। क्या हिजबुल्ला ने अस्पताल नहीं बनाए, क्या हिजबुल्ला ने यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई है, क्या हिजबुल्ला ने हर वो काम नहीं किया जो आवाम की और आपकी कौम की फलाह के लिए अच्छा, बताओ मुझे। क्या उन्होंने वो अदारे नहीं बनाए जहाँ से सामने नौजवान बेदार हो, जिन्होंने इसराइल जैसी मुश्किल तरीन ताकत को भी तहस नहस कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर क्यों मिले बनते हैं। सिर्फ इसलिए एक दफा आला जवान ने फरमाया था कि हमारे पास मुतालबा नहीं है, हम मुतालबा नहीं करते हैं, हमें चित्र मार दो जितने मार रहे हैं, हमें उस लेकिन हमें अपनी जॉब पे जा रहे हैं, हम देर हमें देर हो रही है। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, हम मुतालबा करें अपने अबादीन से, अपने बुजुर्गों से, जो हमारे दीन के रूह रवा है, जो हमारे मकतब के रूह रवा है यहाँ पे, उनसे मुतालबा करो कि हमें क्या चाहिए, हमें अपनी शख्सियत चाहिए, अपनी पहचान चाहिए और साथ साथ हमें अपने अदारे चाहिए। हम क्यों दर्द की झोंकने पर, हम क्यों अगयार के दर पर जाए, हमें ये सब कुछ हमारे अपने पास मौजूद होना चाहिए। 5 करोड़ शिया थोड़ी आबादी नहीं है पाकिस्तान के अंदर और जिनका खरबों का बजट है सालाना, यार अफसोस खरबों का बजट होते हुए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का इतना बजट नहीं जितना आपके अशुरा का बजट है, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का इतना बजट नहीं है जितना सिर्फ आपके अशुरा का बजट है। लेकिन किस तरफ जा रहा है, आपके अशुरा ने आपको क्या दिया पता है आपको, तफरीक दे दी है, माने या ना माने आपको क्या दिया, तफरीक दी है। हमें वो अशुरा चाहिए, उस अशुरा की पहचान चाहिए जो हमें अपने खाता है, जो हमें अपनी पहचान दे, जो इज्जत के साथ जीना सिखा दे, जो हमें ये बता दे कि हम इन तमाम चीजों के महताज नहीं है, हम खुद आपको स्कॉलरशिप देंगे, तुम हमारी यूनिवर्सिटीज में आओ, जी आर पास करके, गैट पास करके, नैट पास करके, आप अपने आप इस काम 5 करोड़ यार, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आर पाकिस्तान, देयर आर 18 करोड़ पीपल, 18 करोड़ वहां है हमारा पाकिस्तान, 20 करोड़ तक पहुंच गई, चले ठीक है, शिया को 1 करोड़ और बढ़ा दो, ठीक है 6 करोड़ जाऊंगा, ठीक है। अब 1/3 हमारी शिलाबादी है यार, 1/3 के लिए सिर्फ एक अदारा आपके पाकिस्तान के अंदर खुला है, आप माने या ना माने, पूरा तो उसका एक बाहर अदारा है जिसने कई थिंकिंग दे रास्ता, एक थिंकिंग दे रास्ता, एक डायरेक्शन दे रास्ता है। इस तरह की एक नहीं, हर सिटी में होने चाहिए, हमारे हर बुजुर्ग दीन बुजुर्गाने दीन को इस तरह के अदारे इस्तेमाल करने की जरूरत है कि वो बनाए हर जगह और किसी एक नाम से नहीं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बढ़ाए, इकट्ठे होकर बढ़ाए, तो फिर देखिएगा पाकिस्तान की तकदीर फिर आप ही आप होगा, फिर आप जो कहोगे वो होगा, जो आप सोचोगे वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो बरादरा ने ऐसे के साथ सच्ची इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम मी ठीक माय ईमेल एड्रेस इज a_lucky313 a_lucky313@yahoo.com और माय सेल नंबर इज 03004118207 डॉक्टर जी रजा लखनी जी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन टू पॉइंट जी एनी क्वेश्चन
सर ने स्टूडेंट ने गेट अप की रजिस्ट्रेशन करवाई है और उसने टाइप में
वेबसाइट पे जो यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है वहाँ पे शायद यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दिया है